भगवद्गीता यथारूप श्लोक क्रमांक एक। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अगर आप प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक को देखेंगे तो उसमें लिखा है शोक संविघ्न मानसः। शोक से संतप्त अपने चित्त के कारण अर्जुन खड़े भी नहीं रह पाए थे और रथ पे जाकर वो बैठ गए थे। मतलब रथ पे बैठे बैठे वो बैठ गए थे। आप देखते होंगे रथ के ऊपर एक बीच में खंभा जैसा होता है, पोल जैसा होता है, तो उसको पकड़ करके वो नीचे बैठ गए थे। बेहोश हो रहे थे प्राय। और क्यों हो रहे थे? उनको यही लग रहा था कि अपने रिश्तेदारों को मैं मार दूंगा तो मैं कैसे सुखी होऊंगा, और इतना बड़ा पाप का कार्य हमसे कराया जा रहा है। और उनको ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है उनसे। उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो उनको युद्ध करना पड़ रहा है। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। बहुत अच्छी बात है पहली लाइन ही। प्रायः इस जगत में जब आप लोगों को भक्ति करने के लिए बोलिए तो लोग वो बोलते हैं कि अरे हमें तो भक्ति करने से क्या लाभ, हमें तो गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमको विधवाओं की सेवा करना चाहिए या हमें खाना बांटना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा किसकी करते हैं? शरीर की सेवा करते हैं। और अगर शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब मेरा शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? वो भी नहीं कर सकता। तो व्यक्ति को इस प्रकार से व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए ताकि उसका शरीर को तो सुख मिले, ऐसा नहीं है कि शरीर को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाए, लेकिन साथ साथ उसकी आत्मा का भी कल्याण होना चाहिए। आप जैसे इस महात्म्य में सुने हैं, कैसे थोड़ी सी भी भक्ति करके, थोड़ी सी आवाज़ इसकी आप कम कर सकते हो, इको हो रहा है हल्का सा मेरे आवाज़, माइक की आवाज़ कम कर दीजिए, तो अद्भुत तरीके से थोड़ी सी अनजाने में भी भक्ति कर लेता है व्यक्ति, तो फिर उसको महान लाभ की प्राप्ति हो जाती है। और उस भक्ति के प्रभाव से जो लोग उस भक्त के संग में आते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है। देखा ना आपने, बकरी को और बाग को लाभ होता है। तो यहाँ बात यह है कि जो असली करुणा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव करुणा उसे कहना चाहिए। संपूर्ण करुणा में मन को, शरीर को और आत्मा को, तीनों को लाभ मिलना चाहिए। कोई भूखा है, आप उसको गीता का उपदेश देंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो सुने। हाँ, आप उस ऋषि की तरह हैं कि आपके प्रभाव से उसका भूख और प्यास नष्ट हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन प्रायः नहीं होता ऐसा लोगों से। तो इस कारण से कोई अगर बहुत दुखी है शारीरिक रूप से तो उसको गीता सुनने में रुचि नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि उनके शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ण किया जाए, लेकिन केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना ये मूर्खता है। उसका आधार है अज्ञान, और वह ज्ञान क्या है? हम शरीर हैं, ये चीज। अब प्रभुपाद जी इसको बड़ा सुंदर बताते हैं कि इस जगत में कितने समय से क्या कहते हैं उसको, दान के कार्य किए जा रहे हैं, कितने सारे अन्य क्षेत्र हैं, ये है सब कुछ है, फिर भी गरीब हैं लोग। तो अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार उनको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए व्यक्तियों को एजुकेशन देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, कैसे हम पाप कर्मों से बचें और भक्ति के कर्मों में लगें या पुण्य कर्मों में लगें ताकि हमारी सदगति प्राप्त, हमको सदगति हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। यानी कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो व्यक्ति ये भी समझ पाएगा कि सामने वाला भी व्यक्ति आत्मा ही है। तो उसके आत्म साक्षात्कार में जो लाभकारी होगा, उस कार्य को वो व्यक्ति करने में सहायता देने का प्रयास करेगा। जैसे अगर किसी को खाना भी बांटना है तो भगवान का प्रसाद बांटेगा तो उससे आत्मा का उत्थान होता है, भक्ति बढ़ती है। अनजाने में भी खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये भक्त का कर्तव्य है कि भगवान के प्रसाद का वितरण करे, लेकिन अलग से खाना बांटने से खाली पुण्य मिलेगा, बस ये चीज़ लाभकारी नहीं। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अर्जुन अब चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मधु नाम के दैत्य को भगवान ने मारा था, तो इन डाउट्स को क्या बोलते, शंकाओं को इन दैत्यों से तुलना की जा रही है। दैत्यों की इस शंका को जो उस हृदय में आ रही है, मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे संबंधी हैं, इनको मार के मैं खुश होऊंगा कि मैं दुखी होऊंगा, इस प्रकार की शंका का आधार था भौतिक चेतना कि मैं शरीर हूं। और इस शंका का समाधान भगवान करेंगे। जैसे उन्होंने पहले दैत्यों को मारा था, ऐसे ही हमारे हृदय के शंकाओं संशयों को मारेंगे। भक्ति में सबसे मुश्किल चीज है, या सबसे बड़ी बाधा आ जाती है, वो है संशय। मैं गीता पढ़ रहा हूं, उसे लाभ होगा क्या? तो गुरु का कर्तव्य है कि एक शिष्य के हृदय में इस संशय का निवारण करे। आप भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पथ पे हो, उसे करते रहो। अदरवाइज नाम जप करने में कोई दिक्कत हो ना, या भगवद गीता पढ़ने में या प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को भौतिक चेतना के कारण भौतिक चीज़ों में बहुत विश्वास होता है। आज मैं इसको पढ़ रहा था, दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक होती है लौकिक श्रद्धा, दूसरी होती है अलौकिक पारलौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा क्या होती है, मैं नौकरी करूंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे, ये भी श्रद्धा पर आधारित है। मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं एक गंतव्य को पहुंच जाऊंगा, तो ये सब लौकिक श्रद्धा है। और इस प्रकार की श्रद्धा रखना बड़ा आसान है, लेकिन कृष्ण हैं, मैं उनका दास हूं, मैं कृष्ण की सेवा करके सुखी हो जाऊंगा, ये सब पारलौकिक श्रद्धा है। और ये सब भगवान के बातों को, भगवान की कथा को सुनने से आती है। और जब ऐसी श्रद्धा होती है तो व्यक्ति के भक्ति में वीर रहता है। वीर का अर्थ होता है शक्ति रहती है, उत्साह रहता है। और अगर श्रद्धा की कमी होती है तो उसको उत्साह नहीं रहता है। तो आवश्यक है कि इस प्रकार से हम नियमित रूप से भगवान के मुख से, गुरुजनों के मुख से सुने, तो हमारे हृदय में जो संशय है उसका निवारण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि पुस्तकों को वितरण करने के साथ साथ उनको पढ़ना, उनको चर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो कुछ समय के बाद हम भक्ति से गायब हो जाएंगे। और ऐसा बहुत बार होता है अपने जीवन में, आप देखेंगे। अगर हम भक्ति में बने रहे तो हम देखेंगे बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो उसमें मुख्य कारण है श्रवण का अभाव। श्रवण को ठीक प्रकार से ना करने के कारण हमारा आधार नहीं रह जाता है भक्ति करने का। हमारा आधार इस समय जो है भक्ति का, वो है ज्ञान। ज्ञान के कारण हम भक्ति कर रहे हैं। तो अगर ज्ञान ठीक से रोज इनपुट नहीं मिलता है तो हम अपनी अपनी जो लौकिक श्रद्धा है उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि देख करके हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि देख करके तो मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन को देख रहे हैं कि ये मेरे माता हैं, पिता, माता तो नहीं है, पिता माँ है, गुरुजन है, इनका मैं वध कैसे करूँ। लेकिन जब वो भगवान से सुनेंगे तब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, या ज्ञान हो जाएगा कि उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्रता ही शोक करता रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि शूद्रों का एक कार्य ही है शोक करना। ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। ये बड़ा अच्छा, एक बार जने निवास प्रभु की क्लास में बता रहे, शूद्रों का यही मतलब सिस्टम ही है कि ये नहीं मिला, हाय ये हो जाता। भौतिक चीजों के लिए शोक करना ये शूद्रों का लक्षण है, और क्षत्रिय उसको वापस पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, जो भगवान की कृपा से आ गया उसी में संतुष्ट होना, उसके बाद भगवान के भजन में लग जाना। कंप्लेन करना, शोक करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। और ब्राह्मण होने के संबंध में अगर कहा जाए तो भक्तों का भी इस प्रकार से संबंध नहीं है। इस जगत में वस्तुतः क्या चीज स्थाई है जिसके लिए हम शोक करें? हमारा शरीर, हमारे पास जो वस्तुएं हैं, वो सब चीजें तो परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील भी नहीं कहना चाहिए, क्षय हो रहा है इनका, हो रहा है ना। हमारे पास कोई वस्तु आती है तो हम सोचते हैं कि हमेशा हमारे पास ये ऐसी ही बनी रहेगी जैसे अभी है, जबकि हम देख रहे हैं हर वस्तु का क्षय हो रहा है, शरीर का, वस्तुओं का, सबका। लेकिन अपने चित्त को भगवान की भक्ति में या भगवान में लगा करके हम इन वस्तुओं में लगाते हैं और फिर शोक होना अवश्यंभावी है, होगा ही। तो हमें शूद्र नहीं बनना। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया है। रियली जब व्यक्ति समझ जाए कि मेरा जगत से कोई संबंध नहीं है, तो शोक करना वो बिल्कुल बंद कर देगा। उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक साल के लिए साउथ इंडिया में एक कॉलेज में था, तो जब मेरा आईआईटी में नहीं हुआ था, तो मैं प्रभावित होता था मेरे कॉलेज में कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम चल गया कि मेरा आईआईटी में हो गया है, तो फिर इस कॉलेज के नंबर से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस कॉलेज से संबंध को ही तोड़ चुका हूँ, मेरा से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जितनी मात्रा में हमें ये आत्म साक्षात्कार होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो शोक करना हम बंद कर देंगे। और अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो भक्ति में आने से पहले का जीवन बिल्कुल एक स्वप्नवत जीवन था, हमें पता ही नहीं था हम क्यों जी रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो आप देखेंगे अगर आप अच्छे से भक्ति करें, समझें भगवद गीता को, तो आप बड़ा संतोष होगा कि अभी मैं कम से कम भक्ति के पथ पे हूं, अब जो गया सो गया, उसमें कुछ लाभ नहीं है शोक करने से। शोक करने से तो ऐसे भी कोई लाभ नहीं होता है, खाली हम जलते रहते। तो ये भक्ति करने का बहुत बड़ा लाभ है, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन का एक कारण है शोक करना, हाय मुझको ये नहीं मिला, हाय मुझको ये नहीं मिला, हाय मुझको ऐसा हो जाता, वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं इसके बारे में, बोलते हैं कि एक भक्त केवल प्रेजेंट में जीता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में जीता है, इस समय वो कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का कृतज्ञ रहता है, बस ज़्यादा चिंता नहीं करता कि आगे क्या होगा, जो होगा। जो व्यक्ति हर समय हमारे शरीर को चला रहा है वो आगे भी चलाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम दायित्व ना लें, लेकिन बहुत चिंता करना ये मूर्खता की निशानी है, और शोक करना तो और मूर्खता है। ठीक, यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के बारे में बताया जाएगा। सांख्य योग का अर्थ है कि व्यक्ति गिनता है कि भाई इस प्रकृति के कितने तत्व हैं, आत्मा इस भौतिक प्रकृति से कैसे अलग है, ये सब बातें। और जब आत्मा का इस जगत से संबंध नहीं है, तो सकाम कर्म यानी कि भौतिक इच्छा से प्रेरित कर्म करने से आत्मा को क्या लाभ, तो इस बारे में भी चर्चा इस अध्याय में होगी। एक श्लोक हम और देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा है, फिर भी चर्चा कर लेते हैं, आज ग्रहण है। ठीक है, स्टॉप हियर नाउ, रिकॉर्डिंग काट दीजिए।